राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 दिसंबर 1992 को दोपहर लगभग 3 बजे कलकत्ता में हुआ।
राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण 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 नारायण।
महात्म बताया कि श्लोक एक भी गीता जी याद हो जाए तो निहाल हो जाए। गीता और गंगा दो की बात तो आई है मन में। गंगा जब थोड़ा सा ले शंकराचार्य महाराज कहते हैं थोड़ा से गंगा दर लव कणिका पीता और गीता
भगवत गीता किंचित।
हाँ भगवत गीता किंचित गीता बात बहुत ठीक भाई। हमारे तो भाई आप लोगों काम चले है हमारे तो वो दीवार में निकला हुआ है भगवत गीता किंचित अधीता जल गंगा जल लव कणिका पीता और ये ना कार्य मुरारे रसा तस्य किं यमस्त कुरते चर्चा। वहाँ थोड़ा गंगा नीर पिया है थोड़ा गीता पाठ किया है थोड़ी भगवी पूज किया है उसका जब ने नाम लिया है समझ में जा नहीं सकती। तो भगवत गीता किंचित था गंगा जी तो गंगा जी की तो मैं बात कहता हूँ इसी केस में तो कही है बहुत बार कही है बहुत परिवारों का है हम जा रहे हैं तो भाई गंगा जल ले जाओ रोज ना गंगा जल ले रोज जाना नियम से गंगा जल लो तुलसी गंगा जल जरूर लो रोज ना नियम से बाल बच्चों को दियो अंत समय में गंगा जल आ जाए तो निहाल हो जाए अंत का पता नहीं नजर कब अचानक मरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवत गीता के श्लोक याद हो जाए तो हमने उपाय सोचा यही कि रोजाना पाठ करो तो रोजाना पाठ कर श्लोक याद हो जाएंगे तो गंगा जल रोजना रहे जो गंगा जी का पाठ गीता जी का पाठ भी रोजना कर रहे तो रोजना याद हो जाए तो कर लेंगे उस वास्ते योजना पाठ कराते हैं तो पाठ करने से वो गीता जी याद हो जाए। अब आज एक बात कहने की मन में आई है आप कृपा करें मेरी बात की तरफ ध्यान दें थोड़ा उसका अध्ययन करें गहरा समझने का उद्योग करें प्रयत्न करें थोड़ा। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए परमात्मा के अनेक विशेषण है वो सत है चित है आनंद है अव्यक्त है अचिंत है ऐसे ऐसे कई तरह के नाम है उनके दो विभाग है सत है चित है आनंद है नित्य है निर्विकार है एक तो ये विशेषण है वो अच्छेद्य है अक्लद्य है अशोच्य है वो अचिंत्य है अव्यक्त है एक ये है तो दो तरह के नाम हुए एक भगवान को विधि बताने वाले कि नित्य सर्वगत यू नित्यवत है, चित्त है, आनंद है, ऐसा भगवान बताने वाले एक बता के अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्रेद्य है, अशोच्य है, अचिंत्य है, ये निषेधात्मक है। एक विद्यात्मक विशेषण है, एक निषेधात्मक विशेषण है। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के साधन भी दो तरह के हैं, एक विद्यात्मक साधन है, एक निषेधात्मक साधन है। साधन जो शुरू होता है परमात्मा की तरफ आदमी चलता है, तो आरंभ कहां से चलता है? तो विवेक बताया, विवेक वेदांत के सिद्धांत में भी सबसे पहले विवेक बताया है, और गीता में भी उपदेश आरंभ हुआ है तो पहले विवेक बताया है। विवेक क्या? सत असत्य, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य त्याज्य, करनी है न करनी है, ऐसा ये दो विवेक विभाग है। तो दो विभागों में से मुख्यता किसकी है ये एक सोचने का है। मुख्यता परमात्मा तत्व के प्राप्ति की है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए निषेधात्मक साधन जितना काम का है उतना विद्यात्मक नहीं है, ये बात एक करनी है। वैराग्य क्या है? राग रहित होना। तो ये जो संसार की सत्ता है और इसकी जो महत्ता है, इसी से ही परमात्मा तत्व दिखता नहीं है, उसका अनुभव नहीं होता है। तो बाधा है ये अनित्य है, इसकी सत्ता और इसको महत्ता दे दिया, इसको आदर दे दिया, ये वास्तव में बाधा लगी हुई है। तो इसका निषेध करना है, ये साधन बहुत बढ़िया है। निषेध करने में परमात्मा स्वतः रह जाएंगे, जैसे जल पर कुमुदनी आ जाती है, तो आपने देखा होगा, नहीं मैंने देखी, कुमुदनी कई तरह की, छोटी छोटी भी होती है, बड़ी बड़ी भी होती है। तो कुमुदनी ऊपर आ जाने से जल दिखता नहीं, छा जाती है। ये मानस सरोवर का वर्णन आया है, गोस्वामी महाराज ने किया है, तो वहां ये बताया कि सघन चौपाई, चौपाई यानी एक कुमुदनी है, ये सघन घनी सारी है। हाँ चार चौपाई, ये चौपाई ना चालू है, ये सघन है मानस सरोवर का, तो इनसे जल ढक जाता है। तो वो तो चौपाई काम की चीज है, परंतु ये जो संसार है इसका आदर और महत्ता है, ये ऐसी कुमोदनी छाई है, परमात्मा दिखते ही नहीं। सब जगह, सब में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, संपूर्ण स्थितियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में जो का क्यों परिपूर्ण है, पर ये जो अवस्थाएं है, घटना है, परिस्थिति है, देश है, काल है, वस्तु है, इनका जो महत्व है ये आद है। रुपयों का महत्व जचा हुआ है, भोगों का महत्व जचा हुआ है, सुख का महत्व जचा हुआ है, आराम का महत्व जचा हुआ है, मान का महत्व जचा हुआ है, बड़ाई का महत्व जचा है, कोई बात कहे तो महाराज समाज में रहते हैं, समाज में कुछ काम करना पड़ता, समाज में गिर जाएंगे, समाज में रहना है, ये है खास बाधा। जिसको आवश्यक समझा है वो खास बाधा है। अब परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे हो? महत्व के विवेचन कैसे चले? मेरा विवेचन काम नहीं चलता। मेरे सामने ऐसी बातें आई है, आप कृपियों की निंदा करते हो, हम रुपयों की निंदा नहीं करते हैं, पर निंदा करते हैं भाई, हम तो करते हैं। रुपयों की नहीं करते हैं, निंदा करते हैं लोभ की। आपकी जो रुपयों में महत्व बुद्धि है उसकी निंदा करते हैं। रुपये तो काम आते हैं और महत्व बुद्धि पतन करती है, नरकों में ले जाती है, उसका निषेध करते हैं। रुपया थोड़ी निषेध कर रहे हैं, रुपये तो आपके पास होगा तो हमारे को भिक्षा मिलेगी, हमारे क्या आज हम निषेध क्यों करें, उसमें तो हमारा हिस्सा भी है, बोलो फिर हम निषेध क्यों करेंगे। इसमें जो महत्व बुद्धि है उसकी जो महत्ता है, जड़ चीजों की नाशवान की महत्ता इतनी दे दी कि आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी साक्षात परमात्मा के अंश हो और अविनाशी हो, आपका विनाश नहीं होता है, पर महत्व आपने अविनाशी को नहीं दिया है, विनाशी को दिया है, रुपयों को दिया है, भोगों को दिया है, मान को दिया है, बड़ाई को दिया है, प्रशंसा को दिया है, परिवार को दिया है, जागृत को दिया है, स्वप्न को दिया है, सुषुप्ति को दिया है, समाधि को दिया है, जो जड़ के संबंध से होने वाली ऊंची ऊंची अवस्था ठेठ समाधि तक भी कारण शरीर का संबंध रहता है। क्रियाओं में स्थूल शरीर का संबंध है, चिंतन में विचार करने में सूक्ष्म शरीर का संबंध है, और स्थिरता में समाधि में कारण शरीर का संबंध है। ये में सब जड़ता का संबंध है, जाहिर जड़ता का संबंध हेटा चिन्मयता तत्व तो स्वतः प्राप्त, स्वाभाविक स्व को प्राप्त। तो निषेधात्म साधन क्या करता है, इसका निषेध करता है, निषेध करने पर वो तत्व है जो ले जाता है। और चिंतन विधि हम करते हैं तो मन से वाणी से विचार से चित्त से बुद्धि से उसका विचार करते हैं तो जड़ता को साथ में रखते हैं, जड़ता के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करते हैं। मैं कहता हूँ कभी कभी तो मेरे सामने लोग ज्यादा बोलते नहीं परंतु मन में मानते हैं, बोल भी देते हैं कई कि महाराज इतना इतना आए उस दिन बिना पैसे कैसे होगा, ये चातुर्मास करते हो, सत्संग करते हो, अब गीता दिन तक उत्सव मनाए है तो बिना पैसे कैसे हो जाएगा। ठीक है भाई, आप ठीक कहते हो, परंतु मेरा कहना बेठीक नहीं है। आप सच्चे हो तो झूठा मैं भी नहीं हूं, वो भी सुन लो। ये महत्व पैसों का नहीं है, नहीं है, नहीं है, पैसों के खर्च का है। पैसे बड़े नहीं है, पैसों का खर्च बड़ा है। अगर खर्च नहीं कर संग्रह करते हो ये सीधा नरकों में ले जाने वाला है। हमें पुस्तक में पढ़ा है कि जो मेहनत करने वाले हैं, मेहनत कर खाने वाले हैं, वे कई संत हो गए, परंतु मेहनत करना करके और मुफ्त में जो हो सकता है मील ऑनर, तो जो मुफ्त में मालिक बनते हैं ना, वो एक भी साधु नहीं हुआ अभी तक। जड़ का महत्व, जड़ के लिए फसल कैसे हो गए, मेहनत कर खाते हैं, वो कमाते हैं खाते हैं, तो वो कमाने की उनकी कमाने की शक्ति है, उस पर विश्वास है, इतना पैसों पर नहीं है। वही कह सकते हैं कि रुपया क्या है, हाथ का मैल है, ये पैदा होता है जाता है, आता है जाता है, इसकी क्या है, यू करते हमारे ताकत है, पैसे कमा लेते हैं। शेर जी ने कई दफे कहा है पैसा पैदा करना हम कठिन नहीं मानते हैं, पैसा कमा लेना इकट्ठा करना नहीं मानते हैं, पैसा का सदुपयोग कठिन है। क्यों, पैदा करने में तो माता पिता स्त्री लड़का भाई कुटुम्बी सब साथ हाँ हाँ लाओ खाऊं 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 डाकी चलो सू भिड़ो, पर खर्च करते हुए महाराज कोई राजी नहीं होते हैं। कहीं कहीं तो पिता को पागल बना देते हैं, ये पागल हो गया, माथा खराब हो गया, कैद में रखो, यूं पैसा लुटाते हैं, कैसे काम चलेगा गृहस्थ में आप, तो खर्च करना कठिन है। और महत्ता है वो खर्च की है, रुपये की नहीं है। मेरे को चुप करने के लिए ऐसी ऐसी युक्तियां है आप लोगों के पास, पर चुप मैं होता नहीं हूँ। अरे रुपया है तो खर्च करने के लिए है, तो खर्च करने के लिए ही रुपया होना चाहिए, संग्रह करने के लिए नहीं होना चाहिए। दोनों में अगर बड़ा है तो रुपया खर्च बड़ा है, रुपया बड़ा नहीं है। खर्च करने से आपके काम आवेगा, खर्च करने से दुनिया का काम आवेगा, संग्रह करने से क्या आवेगा? अभिमान होगा, लोगों को बुरा लगेगा, लोगों के हृदय में जलन होती है आपको रुपया ज्यादा संग्रह देख करके, और जिसके पास कुछ नहीं संग्रह नहीं उसको देख कर शांति मिलती है लोगों को। खर्चा आप करो अब बढ़ाइए, तो खर्च करने के लिए है रुपया, और खर्च करने के लिए रुपया कमाना नहीं है, यह टैक्स है। टैक्स टैक्स के लिए रुपया कमाते हो गया। लोग कहते हैं मतलब हमारे रुपया नहीं, तुम रोटी कहाँ खाओगे? तो मालूम हमारे रोटी की चिंता है, और तो आपको चिंता है ही नहीं कि सब क्या खाएंगे, इस वास्ते कमाते हो। क्यों बात क्या करते हो, क्या बोलते हो? खर्चा करना, दान पुण्य करना बड़ी बात है, परंतु बड़ी बात होते हुए बड़ी नहीं, भगवान का भजन बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। क्योंकि ये तो टैक्स है, रुपया रखते और खर्च नहीं करते। संतों ने कहा धनवत धर्म जो ना करे और नरपत करे न न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाय? धनवत धर्म जो ना करे और नरपत करे न न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाय? कीजे कौन उपाय? सलाह एक सुन लो मारी, क्या बताओ महाराज? कैसे दो बहती रे पूर नदी, जब आवे भारी भारी नदी आवे, बांध पत्थर पटको उठा। दो बहती के पूर नदी जब आवे भारी, जाए गणिंदा खाओता धरती टिके पाव, धनवत धर्म ना करे नरपत करे न्याव। धनवान होकर धर्म नहीं करते, राजा होकर न्याय इंसाफ नहीं करते, ये तो पत्थर बांध नदी में ना गंजे से है, कोई काम का नहीं। भक्ति कर नहीं भगतरा, ये भगतरा क्या लाभ है? आपकी हमारी ये निंदा कर रहे हैं, निंदा भगतरा राज दुआरे भगतरा तीन बात को जाए, क्या मीठ हो गए मान कर कुछ लेने की चाहे, बात साधरा भगतरा राजद्वारे जाए, बड़े बड़े धनियों के वहां जाते हैं, क्यों जाते हैं? तीन बात है राजद्वारे साधरा, तीन बात को जाए कि मीठो के मान को कर मीठो मिल जाए। साधारण घरों में मीठो होता नहीं, सीधी सही मिलती जाती है, मान हो जाए आदर हो जाए, कुछ लेने गया तो मिल जाए, ये बात तो साधरा है। समझे मेरे को कहा है संतों ने, मैं कलकत्ते रहता था तो उन दिनों में संतों ने कहा कैसे बैठे हो इस नगरी में, ये देवता है, देवता पहले आदर करते हैं, आदर करके बदल से गिरा देते हैं, पर तिरस्कार करते हैं, ये देवता है, इनमें कैसे बैठे हो? मेरे को कहा है उसमें बैठे थे हम भाई, ये पहले ये जब तक नहीं ले जब तक सेवा करेंगे महाराज, ये कपड़ा लो और ये भोजन लो और ये चीज लो, लेने लग जा लेने हो जा, स्वभाव स्वभाव जाओ समझ पहले वाला नहीं जा, तो किन बिगाड़िया थे तो बिगाड़िया मत। पहले वाला समझ नहीं जाए फिर छोड़ देंगे, फिर निंदा करेंगे। अप्सराएं आती है ना, श्रृंग की बात है, श्रृंग की बात है, राम जी के उत्पन्न करने के लिए जन्म देने के लिए पहले कहा कि कराओ यज्ञ कराओ, यज्ञ से भगवान अवतार लेंगे, यज्ञ कराओ किसने कराओ? ऋषि श्रृंग से, ऋषि श्रृंग थे, मृगी के पुत्र पैदा हुए थे ऋषि श्रृंग, सिंह था एक श्रृंग ऋषि, सिंगी ऋषि वो अलग है, पुत्र काम यज्ञ कराओ सिंह ऋषि, वो कैसे आ रहे, वो जंगल में बैठे थे तो उनको लाने के लिए गए। थोड़ी में बता देता हूँ बातें तो कई कहने की मन में है, तो गए तो कैसे लाए, जो अप्सराएं गई, अप्सरा गई साथ मिले, वो कहते आओ ब्रह्मचारी जी आओ आओ, ये तो ब्रह्मचारी और चलेगा भाई ऊपर इतनी सी जटार, ये तो ब्रह्मचारी और चलेगा, वे समझे ब्रह्मचारी है सभी ब्रह्मचारी मान लिया। फिर उनको फल खिलाया, फलों के साथ साथ में लड्डू लिया कि हमारे देश में ऐसे फल होते हैं, लड्डू खाओ ये तो मीठा भाई, तुम्हारे ऐसे फल होते, हमारे हमारे फल ऐसे होते हैं, वे ब्रह्मचारी क्या है, कौन ब्रह्मचारी सब सुना है वे ब्रह्मचारी की बात है, और पता ही नहीं स्त्री पुरुष क्या होता है, बस बन से भजन ध्यान ही करते थे बस, और कोई स्त्री का काम ही नहीं, दर्शन दे रहे हैं तो उनको ये ब्रह्मचारी आए हैं ऐसे ऐसे। फिर उनको खिलाया पिलाया, देखा चटोर बनाया, वो चटोर बनाया फिर तुम्हारा मन लगे, वो तुम्हारा फल बड़ा अच्छा है, तुम्हारे से ये कपड़ा दीजिए तो बड़ा अच्छा है, वो सुगंधी आती है इनमें अच्छा है, बाबा जी फंस गए। तब आए महाराज भी ऋषिंग ने यज्ञ किया, उसने राम जी प्रकट हुए, तो ऐसी बात है ये धन्यवाद जगह जगह विश्वामित्र पराशर प्रवृत्त जो जो बड़े बड़े ऋषि हुए अवसरों ने काब किया। ये स्वराज नहीं हुआ था उस समय, मैंने सुना है सम्मत 1919 में 20 में सन 20 में 74 के समय में उज्जैन का कुंभ हुआ, तो ये व्याख्यान देते थे खूब अच्छा, लाला लाजपत राय एक कांग्रेसी लीडर थे, व्याख्यान दिया हमने सुना है कि पूर्व जमाना में तो बाधा दे दी थी अप्सराएं, आज का बाधा देते हैं अफसर, हमारे संवादीकरण देते हमारे निषेध करते हैं, तो पहले अप्सराएं बाधे होती थी, अब अफसर बाधे होते हैं, ये हमने व्याख्यान सुना है। तो महाराज ये जो संसार का भोग है ये फंसाने वाला है, तो निषेध करो इनका, परमात्मा से सागर भगवान ऐसे है, सत्य है, नित्य है, आनंद है, ऐसा है ऐसा है, अरे ऐसा नहीं है, ये खराब है, ये ठीक नहीं है, फंसाने वाला है, नित्य नहीं है, नष्ट होने वाला है, तुम्हारा नाश करने वाला है, पतन करने वाला है, तुम्हारा गुलाम बढ़ा देंगे, जड़ चीजें ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी फंस के विनाशी हम, ये गलत है, तो इसका जो निषेध किया जाएगा ये असली तत्व को पहुंचाने वाली चीज है, तो निषेधात्मक साधन परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने वाला, इस वास्ते विवेक होता है, पहले विवेक और वैराग्य, मानो जड़ चीजों का नाश, जड़ चीजों से उपरति वैराग्य हो जाए, तो खास चीज है ये सत असत का विवेक। गीता ने पहला देह देही शरीर शरीर सत असत नित्य अनित्य ये वर्ण किया है, अशोच्यानुशोच्यास इनका विवेचन करके भी सत्य चीज है तुम्हारी है, ये असत चीज है, नाशवान है, अंत मंत्र में देहा, ये देह सब अंत वाले हैं भैया, खत्म होने वाले हैं, नाशवान है, समझे अंत वाले हैं, नाशवान, धनवान के पास विशेषता क्या है, धनवान कहलाते हैं धन के कारण से, धन के सिवाय क्या विशेषता है, ऐसे इसके पास विशेषता क्या है कि नाशवान, नाश नाश है, नाश ही विशेषता है, संसार की नाशवान है सारी, जैसे धनवान होता है, तो नाश ही इनका संबंध है, तो नाश होने वाली चीजों को महत्व दे करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी होकर के विनाशी में फंस गया, इसका निषेध करना जरूरी है, भगवान को याद करना बढ़िया, जप करना, चिंतन करना, ध्यान करना, समाज सब बढ़िया, परंतु बढ़िया है निषेधात्मक साधन, इसका निराकरण करो, परमात्मा का स्वतः हो जाएगी। जितने तिरुण दुराचार है, आसुरी संपत्ति है, इसका त्याग करो, देवी संपत्ति आपसे आप आगी, देवी संपत्ति है, उसकी जड़ है, बुनियाद है, उनका स्थान है, वो नित्य है। आसुरी संपत्ति आगंतुक है, ऊपर से आई हुई है, नष्ट होने वाली है, मिलने वाली, मिटने वाली है। तो जो साधन है उन साधनों में निषेधात्मक साधन बढ़िया, ये नाशवान भाई इसमें क्या करते हो, ये धोखा होगा, धोखा पीछे रोगे, पश्चाताप करोगे, रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, ये नाश हो जाएंगे। जिन चीजों को आप बढ़िया समझते हो वे सब खत्म हो जाएंगे। ये धन भी रहेगा नहीं, शरीर भी रहेगा नहीं, घर भी रहेगा नहीं, ये चीजें रहेगी नहीं। आप देखते हो धनवान चले गए, गरीब चले गए, शरीर मर गया, रहता नहीं है, धन रहता नहीं है, कुटुंब रहता नहीं है, साथ में रहती नहीं, ये चीजें नाशवान है। उनको महत्व दे दिया तो इनको महत्व न दे करके इनके खर्च को महत्व देना क्या, कि जड़ चीजों का त्याग दो, महत्व त्याग का है, चीजों का नहीं है। कहते नहीं है तो त्याग क्या करे, कि नहीं हो सके। अरे माल इकट्ठा होता है, इनकम करते हो तो टैक्स लगता है, आप मुनाफा करते हो तो उसको कर देना पड़ता है। अरे इनकम है ही नहीं, टैक्स लगेगा, टैक्स लगना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो दंड है, टैक्स तो दंड है। तुमने इतने रुपया कमाए इतना दंड, ये दंड लगेगा तुम्हारे, नहीं कमाओ जैसे कुछ नहीं लगे, माल लगेगा। जगत जगत माल के पीछे, माल ही नहीं जगत के ऐसी जगत के, जगत के लिए रुपये कमाते हो, टैक्स के लिए रुपये कमाते हो, इस तरह से खर्च करने के लिए कमाने में हर्ज नहीं है, पर खर्च करने के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर है, जिसमें भी गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में पैसा रखने की बात आई है, क्योंकि ये सेवा करे, ब्रह्मचारियों की सेवा ये करे, गृहस्थों की सेवा करे, वानप्रस्थों की सेवा करे, सन्यासियों की सेवा करे, तो इनके पास चीज होनी चाहिए, सब करे ना, तो सेवा करो, पर सेवा के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य महाराज बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं, पैसा मांगते हैं, संदा करते हैं, पैसा बिना पैसा कैसे होगा, पहले ही मंगता बनाएगा, वो क्या करेंगे, समय क्या करेंगे, वह क्या उत्सव बनाएंगे, क्या वो पारमार्थ की बात करेंगे, सब पैसे के पीछे। तो पैसों को महत्व दिया है, मैंने कई बार कह दी है, आज भी बात कर दू, आप क्षमा करना, माफी कर देने का, बार बार क्या कहते हो तुम, याद आ गई। कलकत्ते अभी गया था बम्बई, मैंने कहा गाय मर रही है, बार बार में गाय बिना घास के मर रही है, खाने के लिए घास नहीं हुआ, तो उनके लिए आप लोग जाओ, गायों की रक्षा करो, आपका धन सार्थक हो जाए, कमा हुआ धन सार्थक हो जाए। शेष जी रहते हुए ऐसी हुई थी, गोविंद भवन पुराना, जिसमें शेष ने व्याख्यान दिया था, मैं वहां था मौजूद। उन्होंने कहा कि मारवाड़ियों के पास में जितने रुपये है, प्रतिशत एक रुपया खर्च करे तो मारवाड़ की गाय सब जी जाए, एक रुपया, मैं एक रुपया 510-15 से एक रुपया दे देगा, 100 रुपये वाले से एक रुपये कठिन है, 100 में एक रुपया कितना है, एक रुपया 100% एक रुपया, 100 रुपया का एक रुपया, तो 1000 के कितने हो, और 10,000 के अच्छा, और 1,00,000 रुपये के, और करोड़ रुपये हो तो 1,00,000 रुपया नहीं दे सकता, और 5-7 रुपया और 1 रुपया दे सकता है, तो धनी बड़ा कौन होया, बहम है, संख्या हुआ हो गया। अरे अरे पति हो तो 1 करोड़, मुश्किल हो जाए महाराज, छठी जम जाए तो हम राम राम 1 करोड़ रुपया। जितने जमा होते हैं और 1 लाख रुपया जमा है तो कमाओ और खाओ, 1 लाख रुपया मुझे खर्च करते हो छोरा, तुम्हारी क्या दशा होगी, मूलधन खर्च करते हो तो मूलधन के तुड़ी लगाओगे, क्या करोगे, क्या कमाओगे बता, मूलधन इतना महत्व बढ़ा दिया मूलधन का, खर्च क्या करेंगे, खर्च करने के लिए थोड़ा ही है, हाय हाय करना है, खाऊं खाऊं डाकी चलो सूर्य डाकी चलो खाऊ खाऊ खाऊ, बेटा पढ़ना हुआ तो रुपया लो, ज्यादा जितने रुपया वाला है वही ज्यादा भूखे हैं, कम रुपया वाला भूख कम है, कम रुपया वाला भूख कम है, जितना ज्यादा रुपया उन्हें ज्यादा भूख, ज्यादा घाटा उनके, 1 लाख रुपया घाटा हो रहा गरीबों के, कई पीढ़ी 10-15 पीढ़ी तक कभी 1 लाख रुपया घाटा नहीं हुआ, कहीं वो है ही नहीं, क्या घाटा, धीरे सीधे सो धनवंती, सीधे क्या सीधे भिखियारी, और चढ़े सो तो पढ़े पर क्या पढ़े पिसारी, सीधे सो धनवंती सीधे क्या सीधे भिखियारी, क्या सीधे चढ़े सो तो पढ़े पर क्या पढ़े पिसारी, पढ़ गया कहां से पढ़ गया, बैठी पीछे पहले तो ये सीजन के लिए भी नहीं है, आप कमाओ और खर्च करो, खर्च करने के लिए है, आपके ऊपर टैक्स है, आप पैसा कर दे, धनवत धर्म से ना करे, नरपत करे न्याय, ये काम करने का धनवान हो गए तो खर्च करो, खर्च के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, धर्मार्थम यस्य वित्तया विरंतस्य निरीहता प्रसादाधिपतकस्य दूरादस्पर्शनम वरम, धर्मार्थम यस्य वित्तया, जिसकी धन कमाने की इच्छा धर्म के लिए है, दान पुण्य के लिए है, गरीब की सेवा के लिए धन कमाने की इच्छा है, धन कमावे तो सबकी सेवा करें, धर्मार्थम यस्य वित्तया वरंतस्य निरीहता, ऐसा नहीं रखनी अच्छी है, कि क्यों कि प्रसादादि पंकज गली में नाली में बहता, कि क्यों कि प्रसादादि पंकज गली में नाली में बहता कादा, उसमें अपना कपड़ा लेकर सड़क गया, क्या करते हो कि धोएंगे हमारे घर में कल चलती है धो लेंगे, अरे धो लेंगे तो धोया वगैरह मेला ही यूं करते हो, अगर धर्मार्थ ही करते हो तो रुपया कमा करके वो मेले लगा दीजिए, मेले मेले में सफाई नहीं होगी, मेला क्यों लगाते हो, धर्मार्थ हम ये वित्तया वरंत से निरी हेता प्रसाद नाथि पंक से दूरा 10 वर्ष मरम, काजल लगाओ ही मत, ठीक से बैठा है अब काजल लगा करके धो, छटांग भर काजल लगा ले, छटांग भर पानी से ठीक हो जाएगा, सोचो आप छटांग पर कादा लगा है, छटांग पर क्या है, इतना सा गंध लग गया तो छटांग पर पानी से नहीं हुए, पानी काफी दूर से आई है, ऐसे पाप करके पैसा कमाते हो वो पैसा सब लगा दोगे तो भी आपकी शुद्धि नहीं होगी, जितना पाप लगा इतना कादा लगा है तो कैसे हो जाएगा, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप गृह मत कमाओ, मैं तो पहले ही कह दिया कि आप कमाओ तो हमारा तो हिस्सा ही होगा, रोटी मिलेगी, हमारा हर्ज क्या, आप जो लोभ और संशय के ऊपर लगे हुए संख्या बढ़ाते हो, संख्या इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया, महान पतन करने वाली चीज, आ जाए संचय हो जाए तो फेंकना नहीं कहता, पर मौका आवे लगाने का उस समय लगाओ, खुला हाथ से कमा करके खर्च करके और रुपया का एक रस आ रहे वो सुख सुख ले लो, खर्च करके सुख ले लो, और खर्च करके नहीं संग्रह करके सुख लेते हैं, महान पतन करने की बात है, ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वालों के लिए चाहिए वैराग्य और त्याग की आवश्यकता है। जब चीजों का त्याग करो, चिन्मय तत्व आप से आप मिल जाएगा, सब जगह परिपूर्ण तत्व है वो, उसका अभाव नहीं है। एक असत नाशवान जड़ चीजों को महत्व दे दिया, इस वास्ते वो चिन्मय तत्व सत्य तत्व छिप गया। किससे छिप गया? आपकी आंखों से। जिस तरह से बदल आता है, वो बदल का टुकड़ा है, वो सूर्य को ढक लेता है, ध्यान देना, बदल का टुकड़ा सूर्य को नहीं ढकता है, आपकी आंख को ढकता है, कहते हैं वो सूर्य ढका गया। ऐसे आपकी बुद्धि को ढकती है जड़ता की, आदिर बुद्धि महत्व बुद्धि चिन्मय को देखना नहीं देती। चिन्मय तत्व थोड़ा ढकता नाशवान से, बदल से, बदल कितने पैदा होते हैं सूर्य से, वो सूर्य पृथ्वी से जो बड़ा है वो बदल का इतना से टुकड़े से सूर्य ढक जाएगा? सूर्य नहीं ढकता है, आप ढक देती हो, छोटी है। ऐसे ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्षमा करना भाई, अब क्या करो, निकल गया। रुपयों को महत्व देकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपकी बुद्धि ढक गई, समझ में नहीं आती स्वामी जी क्या कहते हैं। फिर क्या कहते हैं स्वामी जी? समझते नहीं, यूं कह के पंडित छोड़ाते हैं। हमारी बात समझो तो सही, मैं रुपयों की निंदा नहीं करता, संग्रह की भी निंदा नहीं करता, पर उपयोग में लाओ भाई, करोगे क्या? एक धनी आदमी वो ने पूछा था, कलकत्ते की बात कई वर्षों पहले की, मैंने पूछा इतना धन इकट्ठा करते हो क्या करोगे, मेरे को बताओ इस धन का क्या करोगे। सज्जन आदमी थे और कहा स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, हमारी पार्टी का धन कम हो। अरे करोगे क्या, कमा करोगे? सज्जन तो कहे उसके महाराज इसका उत्तर हमारे पास नहीं, दाल रोटी पीढ़ियों तक खावे जितना हमारे पास है, तो कमाओ तो खर्च करो आवश्यकता से, हम उदारता से, बड़ी खुशी खुशी से। आज लोगों के धन कमाने के लिए मौका मिलता है उसमें राजी होते हैं, राजी होने से खर्च का मौका मिले वो कहते मैं खर्च करूं, वो कहते मैं खर्च करूं, वो कहते मैं खर्च करूं। खर्च में लाभ है, संग्रह में लाभ नहीं है, पर तो खर्च करने में तुम कर दो, दूसरा कर दे, हमारे आप चढ़ जाए, ये ब्राह्मण साधु आगे ऐसे जिमा दो हमारे आपस में होनी चाहिए कि भरे भोरे भोजन मेरे करो, लड़ाई हो गया क्यों होनी चाहिए। एक संत की बात सुनी मैंने, एक संत है वो गाड़ी में जा रहे थे तो एक शहर में पहुंचे तो वहां खबर आया कि महाराज महात्मा जी इस गाड़ी में आ रहे हैं। तो एक माई गरीब है वो पहुंची पहले, फिर धनी आदमी पहुंचे, रुपये वाले पहुंचे, उसने कहा कि महाराज आज थोड़ी देर आप ठहरोगे, दूसरी गाड़ी पकड़ो तो भिक्षा मेरे करो। ठीक है मैया तुम्हारे कारण है, महाराज ने स्वीकार कर लिया। धनी आदमी आएगी महाराज कि भाई हमने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उसकी यहाँ भिक्षा करेंगे हम, उसके पीछे पड़े कि देख माई बजा महाराज को भिक्षा करने को हमारे को मौका दे दे, तुम्हें रुपया देंगे, तुम ये करेंगे, तुम्हारा घर पक्का बना देंगे। कोई लोग बताया ना वो माई चिड़ गई, तुम भगवान को भी टक्कर से खरीदना चाहते हो, तुम्हारा अंदर कोई काम का नहीं है, महाराज लगे मेरी काम की चीज है, सब में काम की चीज है, तुम्हारे फूक भरी है कि हम धनवान है कर दोगे, ये मकान के बदले में भिक्षा मिलेगी महाराज की? नहीं मिल सकती, तुम पात्र नहीं हो, कुपात्र हो, तो तू क्या कराएगी? कहते ग्वार बड़ी को साग बाजरी की रोटी और राबड़ी दे, अरे हम ऐसा भोजन बढ़िया बनाएंगे, इतने बनाएंगे, मालपुआ बनाएंगे, खीर बनाएंगे, ये बनाएंगे, घेवर बनाएंगे, प्रतीक हम फीका मीठा घेवर, मीठा घेवर फिर दूध उसमें डाला देखा कि तुम भोगी हो, तुम समझते ही नहीं। महाराज के लायक तो हमारा भोजन है, तुम्हारा भोजन है ही नहीं। बाद की रोटी है पड़ी तो अखबार पड़े वो साग मिठो देही लाई बटकिया में घाल कर्म भैरो कर लो। ये अच्छा लगे सबको भटका रहा। एक नौकरी गरीब घर की, अब इनको पैसों से खरीद लेने महाराज भिक्षा को मैं नहीं देती, मुझे स्वीकार कर ली महाराज ने भिक्षा। बस जो जो लो बताया बढ़िया भिक्षा बताई, मकान लो बढ़िया, जूठ चिड़ गई तेज हो गई, तुम पात्र नहीं हो संतों की भिक्षा कराने के, पात्र नहीं हो, तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हारे तो रुपयों की गर्मी है, रुपयों की गर्मी है। संत महात्मा और भगवान रुपयों के अधीन है, संसार में चीजें रुपयों का अधीन है, समझे भगवान भी रुपयों के अधीन है, महात्मा भी रुपयों के अधीन है। या कलकत्ते की बात सुनी मैंने, मैं साथ में था नहीं। एक सेठ बीमार था तो सेठ जी गए मिलने के लिए, तो बात ही बात में उस धनी ने कहा कि महाराज धन से सब मिलता है, धन से सब चीजें मिलती है। धनी आज बीमार था उसने कहा, तो सेठ जी बोले कि सब चीजें मिलती महात्मा नहीं मिलते। क्या महाराज में कई महात्मा कई व्याख्यान देता, कई मनलेषों बता दू, महात्मा नहीं है। महात्मा धन से नहीं मिला, धन से मिलता महात्मा नहीं होता। धन से जो मिलता है वो आपके पास चीज है उनसे खरीदोगे तो खरीदनी जाए वो चीज कम कीमत की होगी। ये 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं क्या? 100 रुपये से कम कीमती चीज मिलेगी। ऐसे पैसों से खरीदोगे तो पैसों से कम मूल्य की चीज मिलेगी। अमूल्य चीज मिलती है वो बिना मूल्य मिलती है। मूल्य लगाते हो आप संतों का भगवान का ही मूल्य लगा लो, इसी तरह हम ले लेंगे। अभिमान बढ़ गया है दुनिया में रहते रहते, सभी आपके ऐसे ही मिलते हैं कि वही देखो रुपयों से हो जाते, रुपयों से फजीती हो जाएगी, नरक होंगे। खर्च न ठीक होगा तो खर्च क्यों करो? रुपया है इस वास्ते करो, नहीं तो खर्च का कौन कहे? ऐसी बात है। तो वास्तव में निषेधात्मक साधन है इन चीजों का त्याग करना, दान करना, पुण्य करना, खर्च करना, सबको सुख पहुंचाना। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पशु मंगल ही मंगल हुआ, न कश्चित दुख हुआ, किसी को दुख न हो, सबको आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले? कि महाराज सुख कैसे करेंगे? पैसा नहीं होगा तो कैसे सुख करेंगे? पैसा हो तो भोजन करा दे देंगे, कपड़ा देंगे, शीतकाल में कंबला देंगे, हम भोजन कराएंगे। कि भोजन से इतना सुख नहीं होता। जिनके पास कौड़ी नहीं है ऐसे साधुओं के द्वारा जो सुख होता है वो धनी द्वारा सुख हो ही नहीं सकता। कैसे सुख हो जाएगा? अंगार इकट्ठा पड़ा हुआ है वो बिखेर हो तो जलन हो जाएगा, गांव में बढ़ जाएगा बेचारा दूसरों का। ये वो बड़ी इकट्ठी करी है, वो क्या फायदा होगा? दो ये धन धन है मदाय, बताया विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम ये ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या पढ़ गए अब शास्त्र करते नीचा दिखाते, हम ऐसा तो नीचा दिखाते दूसरे को, विवाद के लिए विद्या होती है, धन घमंड के लिए हम इतने बड़े धनी है फूंक पड़ गई। जड़ धन के द्वारा चेतन मानता है अजीत इज्जत है फजीती, धन के द्वारा चेतन की महत्ता मान लेना कितनी फजीती है तुम्हारी, मैं समझती नहीं। इज्जत मानते हमारी इज्जत ऐसा हम बड़े जाने फजीती हो रही तुम्हारी, तुम चेतन परमात्मा के साथ साथ अंश उसमें रुपया कमाते हो। रुपया खुद काम नहीं आता किसी के भी, ना खाने में आता, ना पीने में आता, ना बिछाने में आता, ना ओढ़ने में आता। रुपया खर्च के द्वारा काम आता है आपको, बिना खर्च के आ जाएगा। तो भाई रुपया लाओ कमाओ ठीक तरह, परंतु करो किस लिए कि उपार्जन किया है, खर्च करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए। तो ये कब होगा, ये निषेध करोगे ना, त्याग करोगे। तो त्याग रूपी जो निषेध रूपी साधन है वो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। इनका निराकरण करो, खर्च करो, उपदेश करो दूसरों में, त्याग वैराग से अपने रहो, साधन से साधन करो। पहले पहले जितने राजा महाराजा हुए हैं वो धन इकट्ठा करते थे, टैक्स लेते थे, परंतु कितना वो लेते टैक्स उसमें नहीं करते थे। एक कथा आती है, हमने एक कहानी सुनी है, पुस्तकों में होगा कहीं देखा नहीं। एक राजा थे चक्रव्यान, सिर्फ ये सुनी है कथा। चक्रव्यान राजा थे तो वो राज्य करते थे, शासन करते थे, टैक्स लगाते थे, सब लेते थे, और राजा रानी दोनों खेती करते थे। खेती में जितना हो जाए उनसे अपना निर्वाह करते थे, राज करते नहीं, खर्च नहीं करते। तो साधारण मोटा कपड़ा था, साधारण भोजन था। एक दिन बहुत सी स्त्रियां मिल गई, कोई मेला में उसा गई रानी जी के पास में, तो महाराज ये मोतियों का गहना ये हीरार पन्नार देखा। उन्होंने कहा कि आप हमारी मालिक हो, आप महारानी हो, हम तो साधारण स्त्री होंगी, आपके गहना ही नहीं है, आपके इतना बढ़िया मोतियों का हीरों का गहना ही नहीं, साधारण सुहाग की यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, लौंग लगा दिया, बोलिया लगा दिया, स्वागत का सिंह हो गया, आपके गहना नहीं है। आप मालिक हो तो आपके गहना बढ़िया होना चाहिए, हमारे से भी ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारा संगत का रंग लग जाता है। राजा को कहा साहब कि हमारे गहना नहीं है। राजा ने कह दिया हम खेती करते हैं, उसे जितना होता है उतना खर्च हो जाता है, खाने पीने में पहनने में कपड़ा चाहिए, अब गहना कहाँ से करा। कि साहब हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, लोग हमारी प्रजा के इतने इतने गहने हैं, हमारे गहने नहीं। अच्छा क्या, एक आदमी को कहा नौकर को कि जाओ रावण के पास, रावण राज्य करता है, उसे जाकर कहो कि चक्रव्यान ने आपसे कर मांगा है, कर दे, उसे कर लाओ, उसे बना ले जाएगा। वो आदमी पहुंचा लंका में, कहते कैसे आए हो, कहते तुम्हारे से कर लेने के लिए आया। अरे ऐसा जोर से, ऐसे ऐसे आदमी भी जीवे हैं, देखो रावण से भी कर मांगे, अकल कहां गई है, ये कर देने वाला है रावण, रावण कर रहे। कैसा आप देते हो नहीं देते हो, देते हैं बात करते हैं, बात कैसे बोलते हो तुम रावण के सामने, ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी। चुप हो गया मंदोदरी ने रात में कहा कि आप आज 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 भी आएगा ऐसा रावण, देखो मनुष्य अभी तक जीवे ऐसे आदमी। वो आया चक्रव्यान का एक आदमी, वो दूत आया, वो कहता है कि तुम्हारे कर रहे, तो मंदोदरी का कर दिया कि नहीं आपने। पागल वो कैसे समझते नहीं, रावण हूँ रावण में जानती है कि नहीं, तभी तो मैं कहती हूँ कर देती कर देती। रावण कर दिया करता है, ये तो ऋषि मुनियों से भी कर ले गए, नहीं तो कुछ नहीं तो मन स्थिर करके ले लेंगे, हम तो कर रहने वाले देने वाले हैं हम कर्ज। देखो जरूर देना चाहिए, चक्रव्यान का आदमी आ गया तो कर जरूर देना चाहिए आपको, समझती नहीं बिल्कुल मूर्ख। छास अमृत सफलता माया भय हराया, नार स्वभाव सत्य कवि कैर अवगुण आठ सदा हो रही, सदा आठ से भय लगता है, नारी जाती हो। सुबह जाने लगे जल्दी कि आज ठहरो, थोड़ा ठहरो, देरी से जाना, आज कृपा करो महल में ठहरो। ठहर गए वहां महाराज छात के ऊपर कबूतरों को लाड़ा नाचते थे, और कबूतर आते गेरिया आती ये सब चुगते। तुम देखो आपको तमाशा बताऊं क्या, कि ये जो चुग रहे हैं सब, इनको कदम महाराज अधिराज रावण की सौगन है, एक भी दाना चुगा था, कुछ नहीं फर्क पड़ा, वैसे चुग रही है। कैसी पागल है, ये समझते रावण को, रावण क्या है, ये पक्षी क्या समझे, ये तो गेरी है कबूतर है ये है। कहते एक और बताऊं आपको कि महाराज चक्रवर्ण की आपको दुहे सौ गने की दिखा दो, एक बोली थी उसको सिर कट गया। क्या हुआ कि इसने सुना नहीं, इस सिर कट गया इसका। ऐसे है चक्रवर्ण कि तेरा कोई जादू होना है, मैं नहीं मानता हूँ बात करती है सही, तेरे ऐसी बात नहीं मानता मैं। चला गया राजगद्दी जा बैठा, आदमी आया सुबह कैसा, रात में आपने विचार किया कि नहीं, सोना मंगाया है आपको, टैक्स टैक्स है, सोना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कैसे मूर्ख है, ऐसे मूर्ख भी जीव है देखो संसार में, रावण से भी कर मांगते हैं। चाह अच्छा मेरे साथ में चलो। उसने क्या कि समुद्र के किनारे बाड़ू होया करती है, उस बाड़ू को बना करके यूं बूंदा टपक रहे, खेल तमाशा आपके किया हुआ नहीं, हमारे किया हुआ है, पानी में बाड़ू गोल टपकाओ तो बूंदे बूंदे मिलकर मकान बन जाए, दीवार बन जाए, सब ऐसा ही। तो उसने लंका बनाई बाड़ू से, समझ गया ना, पानी में गोल करे और बूंदा डग रही हो जो भी बालू जम जाए, तो पिता बन गया, दरवाजे बन गए, लंका बन गई, ये लंका है देखो। आप देखो लंका यही है ना, सीख रहा नक्शा, लंका ऐसी है ना, हाँ ऐसी है, क्या करोगे। अब देखो आप ध्यान देना, चक्र बहन की महाराज की दुआई यूं हाथ किया, अरे लंका दूंगी वहां, अब दौगे कि नहीं, नहीं तो हाथ मारूंगा भी खिचे अल्लाह मुश्किल, इतना लगेगा अगर सब तय हो जाए आपकी लंका सब चौपट हो जाएगी। देखिए जितने में हाथ मारा वो सब दूर गया, कैसे ऐसे तुम बात मत कर, बात क्यों कह रही आप, खैर दे दो मैं थोड़ी ही आया हूँ, कर रहा हूँ कर दिया। और देर गया वहां पहुंचा तो दो चार दिन लग गए उसमें, कह दो सब ये कहना है या कहना करो, कैसे लाए कि रावण से लाए, वो बात बताई और आदमी बुला के सुना महारानी को सुना, ये बात सुनी तो महारानी बोले हमारे तो कहना ये पतिदेव यही कहना है, हमारे कहना भी चाहिए सोना होना हमारे चाहिए, हमारे कहना क्या करे, वो संग लगाना जो असर हो गया, अब दो चार पांच दिन हो गए अंदर शुद्ध हो गया, हमारे कहना नहीं चाहिए, कहना आप हो, हमारे कहना सभी। तो उसको क्या जाओ जाओ देखो कि चक्रवर्ती स्वीकार नहीं करा, तुम तुम्हारे कहना रखो, हम नहीं स्वीकार करते, जाकर पटकर यही ग्रह स्वीकार नहीं करते। तो राजा महाराजा धन रखते थे, कर लेते थे, मतलब अपने काम में नहीं, अपने काम में जाने वाले वो राजा होते ही नहीं। सीता जी जैसी निष्पाप निष्कलंक जगत जननी जानकी जी, उसका त्याग कर दिया प्रजा के लिए, लव और कुश ने संग वो गया युद्ध बताया ना सुबह, जब सबको हरा दिया इसे खुद राम जी आए, तो राम जी को हमारे कुश भैया के बात करनी है, कुश ने पूछा निर्दोष सीता का आपने त्याग कर, उनको पता नहीं है कि मेरी माँ है यही है सीता, पता नहीं लोग उसको पता नहीं है, बाद में किसी ने बताया नहीं, पर निष्पाप सीता का त्याग किया आपने क्यों किया, ये राजा का धर्म है, ये कर्तव्य है। कोई मनुष्य ऐसा होता है जो ऐसे निष्पाप जिसको कलंक लगाकर निकाल देना घर से? कुछ नहीं पूछा राम जी से, ये क्या धर्म है? भगवान बोले ये राज धर्म है, ये गृह धर्म नहीं, ये राज धर्म है। राजा की प्रसन्नता के लिए अपने प्यारे से प्यारे अंगों को काट डाले वही राजा होता है। कुछ परसों से मैंने थी भोजन कर रहे थे, एक दिन पूछा मैया राम जी मेरे तो मैं बात पूछूंगा। अरे बेटा क्या पूछेगा? कि सीता का त्याग आपने कैसे किया बताओ, इसका जवाब दो, पूछूंगा खून से। कोई पूछे जवाब दिया तो भी समझते। तू राजा होता है वो प्रजा का, लोग तो समझते हैं कि राजा है वो प्रजा का मालिक है। और भाई हमारे को समझते हो कि ये स्वामी जी संत है मालिक है, हाथ आपके नीचे होता हमारे राव मैया बच्चा बड़ा कौन हुआ, देने वाला हुआ लेने वाला। आप भिक्षा नहीं तो बाबा जी सूख जाए, बाबा नहीं होता आपको क्या बाधा पड़े? सत्संग में आते हैं कभी नहीं आते कभी देरी से आते हैं, हमारे को तो भगत पर हाजिर होना ही पड़े क्यों तो को गया ड्यूटी बजानी पड़ती। तो बड़ा कौन है? बैम है आपको स्वामी जी बड़े हैं, बड़े कैसे हुए? अपनी ड्यूटी बजाते हैं भगत पर आते हैं, आप आओ ना हो सब मालिक हो आप, खुद ये नहीं आए आज काम हो गया नींद आ गया नहीं आए, हम नहीं कह सकते नहीं आए, क्यों नहीं आए? टाइम पर आना पड़ेगा, तो देख रहे मैं देख लो बाबा जी ऊंचे आसन पर बैठा बड़ा हो गया। बड़ा होता तरी जाए तेल में तो बड़ा होता, बड़ा मोहनी होता है। ये दशा है बड़ा बैम है आपको, राजा महाराजा राजा अपने को नौकर देखता है, नौकर बड़े बड़े राजा अपने को नौकर देखे प्रजा का नौकर जानते, व्यवस्था करना सब प्रजा की पालना करना ठीक तरह से, धर्म की पालना उनकी रक्षा करना सब, धन की रक्षा करना सब तय करना वो राजा होता है। कालिदास ने देखा प्रजापात तपनो यथा, यथा प्रसाद ना चंद्र प्रजापात तपनो यथा सो अन्व सबूत आज के लिए लिखा। कहते हैं कि ये चंद्रमा होता है ना श्री आह्लादन धातु बनता है, प्रह्लादनाथ चंद्र सबको प्रसन्न करे इस बार चंद्र नाम है, ऐसे प्रताप तेज हो जाए सो तपन है सूर्य का। ऐसे राजा वो भूत है जो प्रजा को राजी करे, राजा प्रकृति निंदनाथ सब प्रजा को निंदन करे खुश के सब राजा होता है, चूसे प्रजा को राजा होता है। जैसा कल युग में बताया कल स्वर्ग में राजा होगा भूप प्रजाशन, प्रजा को खाने वाले राजा होंगे कलयुग में, प्रजा को खाएंगे प्रजा के धन खाएंगे प्रजा को तंग करेंगे टैक्स बढ़ाएंगे मुस्लिम को तंग करेंगे, ऐसा राजा होता है। तो राजा तंग करने के लिए होता है कि रक्षा करने के लिए? ये उनका धर्म है। तो ये निषेधात्मक साधन है, ये इतना बढ़िया है जितना विद्यात्म नहीं है। तो संसार का निषेध करो, भोगों का त्याग करो, संग्रह का त्याग, अपनी मत मानो जैसे चक्रवर्ती पे राजा थे पर अपना धर्म नहीं मानते थे, टैक्स लाओ वहां से दिन बनाएंगे उनके पास धन नहीं, तो राजाओं का धन नहीं था। एक कथा आती महाभारत में धन के लिए श्री ने कहा तो वो गए हैं अगस्त मुनि लोपा मुद्रा के लिए धन के लिए, जो गए राजा महाराजा गए महाराजा ने सब रख लिया, अच्छा इतनी आय है ये खर्चा है राज का बढ़ा ही नहीं पास, कई राजाओं के पास मिले राजा भी साथ में हुए, एक राक्षस के पास मिला धन राक्षस का यक्ष वित्त होता ज्यादा, वो यक्ष वित्त होते हैं जो धन संग्रह करे वो यक्ष राक्षस है, किस यक्ष राक्षस को सचिन ऊपर धन नहीं मिलता। इसलिए धर्म विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीड़नाय खल से दुष्टि साधो विद्या ज्ञानाय धन दानाय और शक्ति परिरक्षण आयो वो संत होते तो निषेध करो इसका खर्च करो। खर्च करने के लिए चीज है आ गई तो खर्च करो भाई। एक दम बात ठीक है लोगों की पहले भूख होती है पीछे धन मिलता है और जो त्याग होते हैं उनके पास धन आ जाए तो पीछे याद हो कहाँ खर्च करें इसको किस में लगावे फिर उसका उपाय सोचते ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण।